ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఆప్ సభీ ఏక్ ఆధ్యాత్మిక స్థాన్ పే ఆయే హై, జహాన్ పర్ నేచురలీ యహాన్ కే స్పిరిచువల్ వైబ్రేషన్స్ ఆప్ ఫీల్ కర్ సక్తే హై, ఎఫర్ట్లెస్లీ, బగైర్ కోయి మెహనత్ కే. जैसे आप इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड. और एक अलग दुनिया के अंदर एक अलग फीलिंग्स क्रिएट होते हैं, जिसके लिए हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इट्स सो नेचुरल. लंबे समय तक यहाँ रहने वाले जो अभ्यास करते हैं, वो इसका जो वाइब्रेशन है कोने कोने में समाया हुआ होता है. और जैसे ही लोग आते हैं, उनको वो फील होता है. जैसे नहीं, आप भोजन बना के रखो और बच्चे आए एंड इट्स रेडी ऑन द टेबल टू यू नो. इस प्रकार से एक मेरे हिसाब से इट्स अ लवली गिफ्ट that you can carry with you. ये यहाँ के जो तीन चार दिन आप रहने वाले हैं, every second आप इसको feel करें, महसूस करें. क्या सुनते हैं? More than that, what you feel inside is that what stays with you. वो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाता है. सुनी हुई चीज़ें शायद और बातें सुनेंगे, इधर से निकल जाएगा, लेकिन जो महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाता है. एंड वो इन्हांस होता चला जाएगा जब हम इसका अभ्यास भी करते हैं. आज के जो दुनिया में, I worked as a psychologist for 3-4 years in Chennai. बहुत सारे जो आज के दुनिया में issues हैं, major बात जो देखी गई वो ये कि चाहे वो relationships में, संबंधों में, घर परिवार में, हमारे आपस के, खास करके स्पेशली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में जो तकरारें होती हैं, जो लोगों को लगता है कि इनके साथ जीना असंभव है, क्यों रहना है यहाँ, क्यों ये व्यक्ति यहाँ है, काश ये ना होता, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ. पर अभी नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा, होंगे तो सही है जी. वो अपने ही चॉइस से वो व्यक्ति उपस्थित है. पर ये जो फीलिंग्स है कि इल फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति, वो इसीलिए नंबर वन बहुत इम्पोर्टेंट कि लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. मैं अपने प्रति विश्वास, अपने प्रति जो हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं है. इसीलिए हम अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाले हमें रिस्पेक्ट दे, सामने वाले हमें प्यार दे, सामने वाले हमें समझें, सामने वाला करे. मैं भी आपसे अपेक्षा रख रही हूँ, आप भी मुझसे अपेक्षा रख रहे हैं. मैं भी आपकी अपेक्षा पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ, आप भी मेरी अपेक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए बात कुछ नहीं है, पर दोनों के बीच के जो वाइब्रेशंस है वो इजी नहीं है, वो प्यार वाला नहीं है, वो यू नो कंफर्टेबल फील नहीं कराता, बल्कि ऐसा महसूस करा था टॉलरेबल नहीं है. ये क्यों होता है? If I have no self-respect, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, हर इंसान के भीतर कॉन्शियसनेस है. इस कॉन्शियसनेस के अंदर, जिसको कहते हैं हिंदी में एक सरल शब्दों में कहा जाए, हम हमेशा एक भान हमारे अंदर एक बनी रहती है. और इसमें दो प्रकार है. एक है जो ये भान है वो मैं अपने लिए क्या समझ रही हूँ, वॉट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, वॉट आई फील अबाउट माई सेल्फ. अब बात ये रही, हम पूरी जिंदगी में, आप नोट किए होंगे, पूरे जिंदगी में वॉट अदर्स थिंक अबाउट मी इज अ प्रायोरिटी. मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ ये मैं सोच ही नहीं रही हूँ. सारा समय मैं यही सोचती हूँ कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है. आप मेरे लिए क्या समझ रहे हो, आप मेरे लिए क्या सोच रहे हो, यही मैं सोचती रहती हूँ. अब आप क्या सोच रहे हो वो भी काम अगर मैं करूँगी, मुझे क्या सोचना है वो कौन सोचेगा? मैं तो दूसरों के लिए सोच रही हूँ. जो मुझे सोचना चाहिए, who's going to do that job? And so, I am not able to have a right thinking. व्यक्ति के पास सही सोच नहीं है तो उनका कर्म भी सही नहीं होगा, इनके बोल भी सही नहीं होगा. मैनेजमेंट सिस्टम में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड MIS. हैव यू हर्ड दैट? मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS. हमारे जो अंदर भी MIS है, हम ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले कि आप मेरे लिए क्या समझते हो, सोचते हो, मुझे उसको गैदर करने में बड़ा रुचि है. कहीं भी मेरा नाम भी सुनती हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे बारे में बात किया जा रहा है. मुझे इतना इतनी अंदर जिज्ञासा होगा कि मैं सुनूं तो सही है मेरे लिए क्या बोल रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए बात कर रहे हो, नेगेटिव ही कर रहे होंगे. आप दोनों आपस में बोल रहे मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, हंस रहे, मेरे को ही देख के हंस रहे हैं. हम हमेशा ये सोचते हैं कि सारी दुनिया मेरे ही पीछे पड़ा, मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे ही दुश्मन हैं, मुझे कोई नहीं पसंद करता. दैट्स एक्चुअली नॉट द ट्रूथ. ऐसी बात नहीं है. सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं. उनका मन है, वो सोच रहे, दैट्स योर प्रॉब्लम. मैं मेरे लिए अपने लिए क्या सोचती हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? कि द साइकोलॉजी इज, मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ, जो मैं अपने बारे में समझती हूँ, लगभग आप भी मेरे लिए उसी दृष्टि से देखोगे, क्योंकि वही वाइब्रेशंस मैं आपको सेंड कर रही होती हूँ. इसलिए वी ऑल ऑफ देम, होल वर्ल्ड, देयर आर टू लेवल्स ऑफ अवेयरनेस वी कैरी विद अस. एक है लो कॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं कि खुद के प्रति हीन भाव. हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया है. हम अंदर क्या भाव रखते हैं, भावना रखते हैं खुद के प्रति और उनके प्रति, वो हमेशा हमारे साथ रह जाता है. फीलिंग स्टेज विद अस, दैट्स व्हाट आई सेड. बातें भूल जाएंगे, इंसिडेंट्स भूल जाएंगे, पर फीलिंग्स रहेगी, वो कैरी करते हैं. फीलिंग्स के लिए कारण भी शायद हम भूल सकते हैं, पर फीलिंग्स रह जाएंगे. बिकॉज वी आर द मास्टर्स ऑफ द क्रिएट we create the feelings. We are the masters of our feelings. हम create करते हैं, तो जो भी हम create करते हैं, वो हमारे भीतर रह जाएंगे. एक है, हम खुद के प्रति लो फील करते हैं, अर्थात हीन भाव रखते हैं. शायद आप मेरे को पसंद नहीं करेंगे, पता नहीं आप मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे, यू नो. इसके कारण हम हेजिटेट करते हैं. हम बहुत अच्छे एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, पर हमको ये हेजिटेशन होगा कि पता नहीं आप पसंद करोगे नहीं करोगे. सेल्फ डाउट, खुद के प्रति विश्वास, वो कॉन्फिडेंस जिसको कहते ना, वो लो हो जाता है, क्योंकि मैं अपने लिए रिस्पेक्ट, प्यार या विश्वास यहाँ है. इसलिए मैं यही सोचती हूँ, सारी दुनिया भी मेरे को ऐसा ही देखते हैं, शायद पसंद नहीं करेंगे, ना कर दे तो क्या होगा, सभी मेरे पर हंस पड़ेंगे तो क्या होगा, यू नो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ये है इनफीरियोरिटी जिसको कहते हैं. और एक है बहुत अभिमान, अहंकार, ईगो, मैं ही सही हूं. आप क्या जानते, आपको कुछ भी नहीं पता, मैं सही हूं, मैं ही ठीक बोल रही हूं, मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम, मैं जानती हूं आप नहीं जानते, इसीलिए आप मेरे सुने, मैं आपकी नहीं सुनने वाली, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना, आपको तो पता ही नहीं, पता तो मुझे है, इसलिए आप मेरे सुने, हम आपके नहीं सुनेंगे. हर बात में जैसे अड़ जाना, अकड़ जाना, ईगो. और यही दो बातें हैं हमारे जीवन में क्लैशेस लाते हैं. और ये दो फीलिंग्स, इन्फीरियोरिटी फीलिंग या अपने आप को बहुत बड़ा समझने की, जो ये दो फीलिंग्स है, ये बहुत अन्य और बातों को जन्म देता है, यू नो. या तो डर होगा, हेजिटेशन होंगे, अभिमान है तो फिर हम यू नो किसी का इज्जत नहीं करेंगे, सबके सामने किसी का इंसल्ट कर देंगे. और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई कुछ भी कहेगा हमें इंसल्ट महसूस होगा. अगर बोले कि बहन जी आप उठ करके यहां बैठे, आपको लगे क्यों क्यों मुझे ऐसा बोला जा रहा है, शायद मेरे को कम समझ रहे हैं लोग, हाँ जी. अच्छा, आपको ये फूल दिया, दूसरे को दूसरा फूल दिया, हमको लगेगा ये छोटा फूल मुझे क्यों दिया गया, बड़ा देखो उनको दिया, छोटा हमें दिया गया. हर्ट होता है, अपमान महसूस होता है. और अगर किसी की महिमा की जाए जबकि वो ऑथेंटिक है, दूसरों का प्रेज, अभिमान, ईगो वालों को पसंद नहीं आएगा. हम ये समझते सब भी मुझे ही प्रेस करे, मेरे ही पास आए, मेरे से ही बात करे, मैं आई एम एवरीवेयर. ये दोनों चीजें जो है इंसान को खुश, शांति रहने नहीं देंगे, खुशी वाली जिंदगी जी नहीं पाएंगे. मान लीजिए सारी दुनिया भी आपके लिए ताली बजाएं, सब आपके ही नाम लिए, फिर भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि ईगो है तो खोखला है, खाली है अंदर. हम अपने लिए हीन भाव रखते हैं तो खाली है, और वो इतने हीन भाव वाले, यू नो लाइक अ पैसिव, वो भी इसको पैसिव ईगो कहते हैं, वो ऐसा डिमांड नहीं करे, ईगो वाला डिमांड करेंगे ये करो ऐसा नहीं करो, पर पैसिव वाला डिमांड नहीं करेगा, वो यू नो वो रूठ जाएगा, जाकर के अपने आप को बंद कर देंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ये सब जो होता है. और आप गुस्सा भी करेंगे तो ऐसा मौन रहेंगे, अपने आप को हानि पहुंचाएंगे, ये सब बातें होती है, यू नो. और आजकल डिप्रेशन हैज बीन बिगेस्ट डिजीज, एंड देर आर मेनी लेवल्स ऑफ डिप्रेशन. हमारे ही घर में है पर हमें पता ही नहीं होता है कि व्यक्ति डिप्रेस्ड है. खैर इसका सिम्टम्स होते हैं पर वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. यहाँ पर अगर हम अब हमारे कर्मों के अनुसार हमने फैमिली बनाई, कर्मों के अनुसार हमें माता पिता मिले, बच्चे मिले, पति मिले, पत्नी मिले, आस पड़ोस मिले, हमारे प्रोफेशन में जो भी हमारे कलीग्स हैं जिनके साथ हमें 8 घंटा काम करना है, हमारे कर्मों अनुसार मिले. सर्टेन टाइम वी चूज पीपल एंड सर्टेन टाइम पीपल चूज अस. इन बोथ द वेज इट्स अ पार्ट ऑफ कर्मा. कई बार आप हमें चुनते हैं, कई बार मैं आपको चुनती हूँ, पर ये चुनाव जो है हमारे अपने कर्मों का ही हिसाब है. इसको हिसाब कहते हैं, इट्स एन अकाउंट. कोई भी संसार में अपने ही किए हुए कर्मों से भाग नहीं पाएगा. कितना भी दूर भाग लें आप, ये स्थान छोड़ दो, घर छोड़ दो, व्यक्ति को छोड़ दो, ये छोड़ दो, इस देश से अलग देश में चले जाओ, कहीं भी जाएंगे अपने ही किए हुए कर्म भगा भगा के आपके पीछे पड़ेगा. हाँ ये ना, हाँ ये ना, तो कहाँ तक भागोगे? सो द बेस्ट थिंग इज स्टे देयर, वहीं रहें. इसलिए कभी भी आध्यात्मिकता आपको घर छोड़ने के, वो छोड़ो, ये छोड़ो, छोड़ने की बात नहीं करते. छोड़ना बड़ा आसान है, निभाना सबसे कठिन है, और उसके लिए आपको शक्ति चाहिए. एंड अनलेस आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, निभाना बहुत कठिन है. आध्यात्मिक शक्ति अर्थात इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ. सत्य जानना आध्यात्मिकता है. बस जीवन में कई ऐसे सत्य है जिनको हम जानते बेशक होंगे, ऐसे भी नहीं है, हम भारतवासी हैं, पर समझ करके उस अनुसार चलते रहें एंड योर लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी. इनफैक्ट जीवन बहुत सीधा है, इजी है, इंजॉयबल है, पर हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत कठिन बना देते हैं, जीवन जीना बड़ा मुश्किल बना देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं. बिकॉज हम क्या फील करते हैं, ध्यान से सुने, क्या फील करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसा मेरा व्यवहार होगा, ये चार बातें मैं अपने आप को क्या समझती हूँ इस पर डिपेंड करता है. कई बार गुस्से में कहते ना, क्या समझते हो अपने आप को, ऐसे बोलते ना, पर सारा खेल ही ये है, सारा खेल ही ये है. द यूनिवर्सल क्वेश्चन नेवर आंसर्ड सो फार इज व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ. In short, who am I? You see, volumes of books, libraries में आप चले जाएं, volumes of books आपको मिलेंगे. लेकिन सीधा सिंपल बात भगवान हमको ये बताते हैं, बड़ा सिंपल, जीवन सिंपल, spirituality सिंपल, अर्थ सिंपल, लेकिन कोई भी चीज सिंपल सीधा होती है हम उनको वैल्यू नहीं देते, उसको कॉम्प्लिकेटेड एक बहुत बढ़िया सा पैकेज में देंगे, हमको लगता है ओह कितना अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, एंड हम क्यू में लग करके भी डबल उसको पे करके भी हम उसको क्रैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि यहां पर वो इजी भी मिल रहा है, पर हमको लगता है इतनी बड़ी बात इजी मिल जाएंगे, ऐसे कैसे होंगे, ये तो मिल ही नहीं सकते, इसके लिए वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करना, करना कुछ नहीं है, समझना है। करेंगे तब ना जब समझेंगे, समझे ही ना हो तो करेंगे क्या, तो करते रहे जिंदगी भर, मिलना तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो समझता है, जो सोचता है, समझता है, इंसान वही करता है जो महसूस करता, जो महसूस करता है वो करने को तैयार हो जाता है। एंड सो आई नीड टू क्रिएट अ राइट थॉट, आई नीड टू क्रिएट अ राइट फीलिंग। परिस्थिति क्या भी हो, लोग क्या भी हो, लोग मेरे लिए क्या भी सोच रहे हो, मैं अपने लिए राइट फीलिंग, राइट थॉट क्रिएट करना, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य। एंड सो कमिंग बैक टू सेल्फ, एक छोटी सी कहानी ताकि आपकी नींद चली जाए। किस किस ने लास्ट मंथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, अपने अपने घरों में मनाई होंगे ना? हाँ, किस किस ने जन्माष्टमी मनाई, है ना? पता तो है ना, कृष्ण जन्माष्टमी थी लास्ट मंथ, या मनाई होगी, नहीं भी मनाई होगी, बट वी नो आप अपने देवालय तो गए ही होंगे, आरती तो किए होंगे। एनीवे, एक बार छोटा बालक कन्हैया जब था, छोटा बालक था, वो उनके घर में जो पिलर्स, घरों में पिलर्स होते थे ना पुराने जमाने में, वो माँ से छिपने के लिए वो पिलर के पीछे छिपके खड़ा हो गया। छिपके खड़ा हो गया तो माँ ढूंढती रही बच्चे को, भाई कहाँ है कहाँ है। तो इस दौरान वो बच्चे ने वो अपने ही प्रतिबिंब उस पिलर में देखा। संगमरमर का होगा, आई डोंट नो, उसमें तो कहानी में ये नहीं था कि किस चीज का वो पिलर बना। और वो बालक को लगा, अरे ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर, इतना सुंदर मुख है, इतना सुंदर। तो वो भाग के माँ के पास गया और कहा, ये हमारे घर में ना एक छोटा सा बहुत सुंदर बालक आया हुआ है। माँ को लगा इस समय कौन बालक आया है, तो बोला चलो दिखाओ मुझे। तो इधर आओ, इधर आओ। तो बोला ये जो है ना, इधर ये पिलर है ना खंभे में, देखो एक छोटा सा बालक बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर, मनमोहक है। तो माँ को बड़ी हंसी आई, बोला लल्ला ये तुम्हारा ही अपना प्रतिबिंब है। कहते अच्छा, तो मैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ। तो माँ ने बोला क्यों? कहता ये जो बिंब है वो दूसरे देख सकते हैं, मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं अपना प्रतिबिंब जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर सारी दुनिया ये इतना मनमोहक रूप को देख के एंजॉय करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ मेडिटेशन। ये बाह्य रूप को सारी दुनिया देखते हैं। हाँ, आज की दुनिया में इतने संसाधन हैं, हम स्वयं भी आईने के सामने खड़े होकर ये शरीर के प्रतिबिंब को देखकर उसके आधार पर हम अपना अभिमान हो ये लोहीन भाव है हम जागृत करते हैं। अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छे हैं, रंग रूप अच्छे हैं, तो हम अपने रूप पर अभिमान करते हैं। हमारे पास धन है, दौलत है, इस पर अभिमान करते हैं, हाँ जी। और हम बोलते हैं भाई हमारे पास ये है, देखो मैं ऐसी हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं वो। अगर पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो हम अपने लिए हीन भाव रखते हैं, हमारे लिए धन दौलत अपने पास नहीं है, हमको हेजिटेट होता कि हम कैसे जाए इनके यहाँ, हाँ जी। किसी के घर जाने के लिए भी लोग सोचते हैं कैसे जाए इनके यहाँ। तो ये दोनों भाव इस शरीर को देखकर क्रिएट होता है। आई एम नॉट वॉट आई हैव, आई एम वॉट आई एम। मेरे पास क्या चीज है उससे मैं नहीं बनती, मैं जो हूं सो हूं. सो द फर्स्ट लेसन इन राज योग मेडिटेशन इज टू नो वॉट आई एम, इट इज नॉट टू नो वॉट आई हैव. इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, यू नो, फिजिकल थिंग्स के, फिजिकल चीजों के हिसाब से मैं अपनी नहीं बनती. एक सीईओ था एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का. वो रिटायर्ड होकर के कई साल हो गए. कोई भी कहीं भी जाता था वो अपने लिए ही बोलता था, आपका परिचय, मैं एक्स सीईओ. वो एक्स होकर के भी कई साल हो गए, पर उस पहचान के साथ होल्ड करता रहा. हम भी कई बार हम अपने पहचान को इस जगत के, इस संसार की बातों के साथ हम जोड़ के उसको होल्ड करके रखते हैं. पर एक बात हमेशा याद रखिए, इस संसार ने जो भी आइडेंटिटी दी है एक न एक दिन खत्म हो जाना. हाँ या ना, यस और नो, नंबर वन. सेकंड, इस संसार ने हमें जो भी आइडेंटिटी दी है वो हमें मिली है, वो पहचान हमें दी गई है. यहां तक भी नाम भी किसी ने दिया, हमने अपना नाम रखा, पैदा हमें किसी और ने किया, नाम भी किसी और ने दिया. पर एक मिनट के लिए आंखें बंद करें, सो नहीं जाना, ओके? टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स. एक मिनट के लिए सोचे, जस्ट थिंक, जस्ट थिंक. जिस दिन मेरे पास धन दौलत, लोग, फैमिली, प्रोफेशन, ये सब कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या होगा? यहां तक भी ये शरीर भी एक दिन नहीं रहेगा, तब मैं क्या होऊंगा? ये शरीर भी मुझे मिला, इस शरीर से पहले भी मैं था, अब भी हूं. ये शरीर चला जाए तब भी मैं होऊंगा, तब कौन होऊंगा? टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर आईज. कौन होंगे हम जब कुछ नहीं हमारे पास होंगे? यहां तक ये शरीर भी नहीं होगा, तुम क्या होंगे? क्योंकि ये सत्य है, जो सत्य है उसको अविनाशी कहते हैं, नेवर डिस्ट्रॉय, नेवर डिस्ट्रॉय. और ये हमारा असली पहचान. ये सब आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, पर ये मेरा असली रूप जो है कि मैं अविनाशी, सत्य, कभी नाश न होने वाली मैं आत्मा हूं, जो प्रकृति के बीच में निवास करती हूं. मैं हमेशा हूं, अविनाशी हूं. और मुझ आत्मा को संसार की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती. क्यों? कि मैं अविनाशी हूं. ये पंच तत्वों से, इस प्रकृति के तत्वों से अतीत हूं, बियॉन्ड एनीथिंग फिजिकल. इसको कहते हैं स्पिरिचुअल. इसलिए स्पिरिचुअल माना, स्पिरिचुअल शब्द भी क्यों आए, आध्यात्मिक ये शब्द क्यों आया? सोल से कनेक्टेड स्पिरिट, क्रिश्चियनिटी में आत्मा को स्पिरिट भी कहते हैं, वो नहीं लगाने वाला स्पिरिट नहीं, ये आत्मा को स्पिरिट कहते हैं क्योंकि इट्स एनर्जी। तो स्पिरिट से जुड़ी हुई बातें जो जानता है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिट से, आत्मा से, सोल से जुड़ी हुई बातों को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, सोल के कॉन्शियसनेस में रहने वाले को स्पिरिचुअल व्यक्ति कहा जाता है। आध्यात्मिक अर्थात आत्मा से संबंधित बातों को आध्यात्मिक बातें कहा जाता है। आत्मा के भान में, फीलिंग में रहने वाला इंसान आध्यात्मिक व्यक्ति है। बाकी रामायण पढ़ लो, बाइबल पढ़ ले, यू नो 18 अध्याय हमारे टिप ऑफ द टांग हो, मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन में हम फील क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमारी जिंदगी है। बाय द एंड ऑफ द डे बातें होंगी, कोई अच्छे होंगे, कोई नहीं होंगे, कोई टूटेगा, कोई आ जाएगा, कोई जाएगा, ये सब होता रहेगा। बट बाय द एंड ऑफ द डे आप क्या महसूस करते हो वो आपके साथ रह जाएगा, हाँ जी। एंड वो महसूस क्या हमें करना है वो हमारे हाथ की बात है। आप क्या करते हो आप पर मुझे कोई कंट्रोल नहीं है, हाँ जी। आप क्या बोलते हो आपके मुंह पर ताला मैं नहीं लगा सकती, आपका व्यवहार है मैं कुछ नहीं कर सकती, हाँ आपके बारे क्या सोचना है वो मेरे हाथ की बात है। ये है स्पिरिचुअलिटी, इसको कहते हैं राइट थिंकिंग। तो जब आत्मा कहते हैं, आत्मा शब्द हम सब के लिए कॉमनली सुनी हुई बात है, सुना हुआ शब्द है, पर आत्मा है क्या इसके एनाटॉमी हम नहीं जानते, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे ये शरीर जो है 9 महीना वो बनता है, क्रिएट होता है, जो हम सब जानते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी किसी भी चीज से बनाई नहीं गई, क्योंकि ये बनाई नहीं जा सकती, इट इज नॉट क्रिएटेड एंड सो इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। आत्मा कभी बनाई नहीं गई, इस चीज से इस मिला करके इसको बना दो, ऐसा बनाई नहीं गई। इसलिए इस संसार में 3 चीज अमर है, अमर कहें अविनाशी कहें, कभी भी विनाश को नहीं प्राप्त हो सकते, ये साइंस में भी है। नंबर 1 ये प्रकृति, प्रकृति का कभी विनाश नहीं हो सकता। हाँ द साइंस सेज प्रकृति एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, पर विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। सो प्रकृति विनाश नहीं हो सकती, अमर है। सेकंड आत्मा, पुरुष कहते हैं, आत्मा को एक दूसरा संस्कृत में नाम है पुरुष, पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा पुरुष इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति को अनुभव करने वाला पुरुष होता है। अब ये शरीर क्या है, शरीर क्या है जी, प्रकृति है, पंच तत्वों से बना है ना। अब इस शरीर को यूज कौन कर रहा है, इस शरीर को यूज कौन कर रहा है अगर आत्मा नहीं है, ये तो डेड बॉडी पड़ा है। तो पुरुष आत्मा इस शरीर को उपयोग करती है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहा गया है। अभी प्रकृति हमें आम देंगे, आम के पेड़ से आम निकलेंगे, पेड़ तो नहीं खाएगा ना आम, पेड़ आम कौन खाता है, कौन खाता है, पुरुष खाता है, आत्मा मनुष्य खाते हैं, मनुष्य में जब आत्मा है ना तब खाते हैं। जल है, नदी जल हमको दे रहा है, तो पिता कौन है? पुरुष पिता है। तो ये प्रकृति को एंजॉय करने वाला पुरुष आत्मा होता है, आत्मा होता है। और वो पुरुष भी अविनाशी है क्योंकि आत्मा किसी चीज से बनी नहीं है। एंड थर्ड थिंग इज परम पुरुष अर्थात परमात्मा, ईश्वर, जो भी नाम से पुकारा जाए वो भी अविनाशी है। तो ये तीन चीजें इस संसार में कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। तो सबसे खुशी वाली बात यह है कि मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूं, हमारे लिए मृत्यु नहीं है। हाँ, ये पैदा हुआ है तो ये बदल जाएंगे, प्रकृति से मिला फिर प्रकृति को हम दे देंगे, जला दिया जाएगा फिर प्रकृति फिर दूसरा दे देगा, ये क्रम चलता रहेगा। अगर हम इस प्रकृति से अटैच हो जाएंगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। आपको पता है लोग रोते क्यों है जब कोई शरीर छोड़ता है, कोई मर जाता है ना, रोते क्यों है बताइए? क्योंकि हम उनसे यूज्ड हो गए हैं, वो उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। हम उनके काम ना ये नहीं करते भी कहीं भी हैं तो अच्छा रहें और अच्छा उनको मिले। हमको लगता है कि वी आर होल्डिंग टू पीपल, वी आर होल्डिंग टू थिंग्स, हमारा मोह हमें दुख दे रहा है। एक बार लंदन में एक यंग मदर थी, तो उनका पति शरीर बहुत बड़ा बंगलो उनका था, तो उनका पति का देहांत हो गया था, तो शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो मेरे को कहा गया इनसे थोड़ा सा बात करना, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। एंड वो योग, ध्यान योग भी कर रही थी, तो मैंने कहा कि आप इतना रो क्यों रही हो जबकि आपको ज्ञान का पता है, आत्मा का ज्ञान का। कहता मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मुझे मालूम है आत्मा अविनाशी है, वो दूसरा शरीर लेके खुश रहेगा, पर मैं ये सोच रही इतना बड़ा घर संभालेगा कौन, बिल कौन पे करेगा, वो सारा झाड़ू करता था, यू नो लाइक वो मशीन में बेशक करता है पर ये सब करता था, अब ये सब कौन करेगा, और मैं अकेले कैसे रहूँगी इस घर में, मैं रोना इसका है आपका? कहता यही तो रोना है मेरा, मैं इतना बड़ा जैसे घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी, बाकी सारा काम कैसे करेंगे, मैं अपने लिए खाना खाऊंगी, अपने लिए खाना बनाऊंगी, सब कुछ, इट्स इम्पॉसिबल टू लिव। मैंने कहा ये बात है, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अटैचमेंट के कारण रोते हैं, और जहां अटैचमेंट है वह दो बातें, एक भय एक दर्द, ये बाय प्रोडक्ट है। जब जब आपके मन में दर्द होगा, भय होगा, आप मान के चलिए उस चीज को हम पकड़ के बैठे, या चलिए, आत्मा एक अति सूक्ष्म, एक लाइट है, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, कोई भी शक्ति डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी, लाइट है। जैसे आपके मन के फ्रेम में आने के लिए किस किस ने सितारे देखे हैं, स्टार्स इन द स्काई, या स्टार्स इन द स्काई देखा है ना, बिल्कुल उसी तरह लाइक अ ट्विंकलिंग स्टार प्रकृति के बीच में इस शरीर में मैं आत्मा विराजमान हूं और इस शरीर के सारे कर्म में करते हूं। अब दो चीजें हैं, एक ये शरीर, एक है ये शरीर और ये आत्मा। अब अपने आप को क्या समझें, मैं कौन हूं, ये कि ये? अगर मैं ये समझूं मैं शरीर हूं तो उसमें लगेगा मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छी हूं, मैं खराब हूं, मैं ये हूं, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस है। अगर मैं ये सोचती हूं मैं आत्मा हूं, सदैव हूं, आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, आप भी, चॉइस नहीं है। इसलिए इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी, इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी के लिए चांस नहीं है। वी कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू कॉन्शियसनेस, यू नो। कभी अपने लिए हीन भाव रखते हैं, अपने लिए अभिमानी हो जाते हैं, कुछ हासिल किया, कुछ हुआ तो मैं सब कुछ, कुछ हो गया तो मैं कोई काम की नहीं। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, और इन दोनों को अभिमान ही कहा जाएगा। दोनों अभिमान है, और इसको इस आध्यात्मिक लैंग्वेज में देह अभिमान कहा जाता है। मैं अपने आप को बॉडी समझने से ही ये दोनों फीलिंग्स आते हैं। तो दो कॉन्शियसनेस है, दो फीलिंग्स है, एक है अपने आप को शरीर समझ करके या अभिमान या हीन भाव रखो, या अपने आप को आत्मा समझ करके खुश रहो। कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ, बोलने वाली मैं आत्मा हूँ, चलने वाली मैं आत्मा हूँ, कर मैं रही हूँ, और मैं आत्मा, काम पूरा हो गया, इस शरीर से निकल गई, दूसरा शरीर मिल गया। आपके पास कितने भी द लेटेस्ट कार हो, गाड़ी हो, यू नो, मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपने गाड़ी खरीदा हो, इसमें सोते तो नहीं होंगे ना, इसमें रहते तो नहीं होंगे ना, एक जगह बैठ, उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वहां से जाकर वापस घर आए तो गाड़ी में ही रहेंगे, गाड़ी छोड़ के घर के अंदर प्रवेश करेंगे? हाँ जी, अरे बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत बढ़िया, तो इसी में बैठे तो नहीं रहेंगे ना, छोड़ना तो पड़े ना। तो ये कितना भी बढ़िया ये गाड़ी हो, हाँ जी, ये कार यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ही एक माध्यम है। जैसे हमारा पूरा हुआ, इस गाड़ी से निकल करके मुझे अपना घर प्रवेश करना है, जो इस संसार से पार है। अब आते हैं MIS, यू नो, MIS इज एवरीवेयर इन एवरी डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। अब आत्मा चीज है क्या? इसमें तीन मुख्य फैकल्टी है, तीन मुख्य कार्य, तीन मुख्य ऐसे भाग तो मैं नहीं कहूंगी, पर इसके इसके एनाटॉमी है, इसके, जैसे सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, ये चेहरा है आपका, व्हाट इज चेहरा? चेहरा माना क्या जी? सिर्फ नाक को चेहरा कहते हैं? सिर्फ कान को चेहरा कहते हैं? सिर्फ आंख को चेहरा कहते हैं? ये सब मिला करके चेहरा है ना, हाँ जी। इसी तरह जब हम आत्मा कहते हैं, उसमें MIS, ये तीन मिला करके आत्मा कहते हैं। व्हाट इज दैट MIS? नंबर वन, आत्मा के अंदर मन है, हम सोच रहे हैं। आप यहां बैठे सुन रहे, कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन सुन रहा है? सुन नहीं रहे आप? हेलो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं 100% लिख के दे सकती हूं आप कुछ और भी सोच रहे हैं। मन 10 बार बाहर घूम के आ गया बगैर आपकी इजाजत के, आपको पता ही नहीं कब मन चला भी गया। आप ऐसे भी कर रहे हो और मन वहां घूम कर भी 1 सेकेंड में घूम के आ गया। अब ये मन इस शरीर के किसी भाग में नहीं है, आत्मा का भाग है वो। मन से सोच, मस्तिष्क से नहीं सोचते, मन से सोचते हैं। ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स, या ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, शरीर का एक हिस्सा है, पर मन आत्मा का हिस्सा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है, हे अर्जुन मन मना भव, तुम अपने मन मुझे दे दो, अपने मस्तिष्क मुझे देने की बात नहीं कही है। मन क्योंकि आत्मा का हिस्सा है, मन मुझे लगा। अब हम प्रेयर करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन लगना चाहिए ना, कोई ये नहीं कि तो मस्तिष्क लगना है, मस्तिष्क की बात नहीं है, मन की बात है। नंबर वन माइंड, M फॉर माइंड। सेकेंड, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कल के, परसों के, आज के, इनके बारे में, इनके बारे में, हाँ जी, जो ये आंखें देखी, जो महसूस किया, जो खाया, जो सुना, इन कर्मेंद्रियों को, इसको कहते हैं कर्मेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियों से जो भी हम इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं उसके बारे में मन सोचना शुरू कर देता है, राइट? तो जितना जितना बाह्य इन कर्मेंद्रियों के, बाह्य जगत के इंफॉर्मेशन हम परसीव करते हैं, उतना हम अपने अंदर की जो बातें उसको हम भूलते चले जाएंगे, बिकॉज वी आर मोर आउटवर्ड। इसको कहते हैं बाह्य मुक्ता। बाहर की बातों में हम इतने लिप्त हैं, इतने लिप्त हैं, मुझे अंदर जैसी दुनिया इतनी बड़ी है बाहर, उतनी बड़ी दुनिया अपने भीतर भी है, हम उसके बारे में हमारा ध्यान हट जाएगा, है जी। अब इस मन को लगाम लगाने वाली एक दूसरे महाशक्ति है, उसको कहते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट, एम आई इंटेलेक्ट, बुद्धि। आप किस किस को शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है? बहनों को बहुत अच्छा लगता है, भाइयों को अच्छा लगता है शॉपिंग? नहीं, कम लगता है ना, बहने बहनों को अच्छा लगता है। एनीवे, मान लीजिए आपने एक लिस्ट लेकर के एक मॉल में गए, एक दुकान में गए, ठीक है, तो आपको पता ही लिस्ट में जो चीजें हैं वो मुझे खरीदना है। वहां गए तो बहुत और चीजें देखे, मन किया ये भी खरीदे, ये भी, अरे इसको छोड़ो, हम ये उसको खरीदे, तो आउट ऑफ लिस्ट हम मन खरीदने का मन करता है, करता है ना, अभी ये ले, ये भी ले लो, ये भी ले ले। पर आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि ये कहते है, अरे भाई रहने दो, पहला पॉकेट तो देख लो, हैं जी। मन तो बहुत करता है, मन तो करता है पूरा मॉल ही उठा के ले जाए, पर बुद्धि कहती है ठहर जा भाई, ठहर जा, इतना नहीं है मेरे पास, अब हम इस लिस्ट में देखते हैं अब बहुत जरूरी क्या है, ये बाद में भी लिया जा सकता है, अब ये नहीं, ये लिया जाए, अब नहीं बाद में लिया जाए। तो ये बुद्धि, बुद्धि क्या है, ध्यान से सुनेंगे, बुद्धि इज कॉल्ड द पावर ऑफ चॉइस। ईश्वर ने जब से हमने जन्म लिया ये हमारे हाथ में रख दिया, बच्चा जब तुम नीचे जाओगे हर पग पग में पावर ऑफ चॉइस तुम खुद यूज करो। आपने राइट चॉइस किया, राइट निर्णय किया, हैप्पी हैप्पी, एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी पछताना होगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप को जीवन कैसा जीना है यह आपका चॉइस है, दुखी रहना है आपका चॉइस है, खुश रहना है वो भी आपका चॉइस है, तो यू चूज। आप अपने जीवन में किस चीज के लिए प्रायोरिटी दे रहे हो यह आपकी चॉइस है, हैं जी। आप दुकान में गए, वहां हंड्रेड्स ऑफ शर्ट्स थे कि नहीं, आपने यही वाला क्यों चूज किया, ये ग्रे वाला क्यों पहना जी, आपको किसी ने बोला क्या, आपने पसंद की, इट वॉज योर चॉइस। और जो, ये भी ध्यान से सुनेंगे, जो व्यक्ति खुद अपनी बुद्धि से, होशो आवाज से चूज करता है, इसका संपूर्ण परिणाम का भी अधिकारी, रिस्पॉन्सिबल वही होगा। You are responsible for all the consequences of the choice you made. चूज मैं करूं, इसका जो परिणाम आप पे थोपू ये नहीं हो सकता, आपके कारण ये हुआ, आपके कारण ये हुआ, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसी बुद्धि, बुद्धि मन को भी लगाम लगा सकती है। और तीसरी बात है संस्कार, जो मैंने मन से सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, इसके बाद इन कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा जो कर्म करती हूं, इसका परिणाम भी आत्मा में छप जाती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं या कर्मों का फल कहें, हैं जी। जब कभी भी दुख होता है जीवन में, अक्सर क्या करते हैं, करते पता नहीं किस जन्म में क्या किया, ये हुआ संस्कार। एंड वी ऑल द टाइम थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम द डे वन, जब से हम अपने जीवन की यात्रा शुरू की है, जीवन की यात्रा ये संस्कारों के आधार पर हमारा चलता रहता है, कर्म और संस्कार। आज हम जो भी हैं अपने संस्कारों के कारण है, हमारे पास जो भी है कर्मों के कारण है। अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वो शक्ति है जो अपने असली, मेरा जो स्वरूप है उसको याद करके, फील महसूस करके, अपने संस्कार जो नेगेटिव बन गया है उसको हम अच्छा बना सकते हैं, कर्म जो नेगेटिव बन गया है उसको ठीक कर सकते हैं, पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस संसार का एक नियम है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ प्रॉपर्टी, हैज इट्स क्वालिटी। हर चीज का क्वालिटी, हर चीज की क्वालिटी होती है ना। अब ये साड़ी, इसकी क्वालिटी क्या है, यह है इसकी क्वालिटी क्या है, हैं जी। इसी तरह आत्मा भी जो अविनाशी है उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे आग का धर्म, आग का क्वालिटी, आग की क्वालिटी जलाना, और जल, जल का जो क्वालिटी है वो शीतल, ऐसे ही ना। एवरीथिंग हैज इट्स हैज अ प्रॉपर्टी, हैज अ क्वालिटी, जिसको धर्म भी कहते हैं। इसी तरह आत्मा का जो धर्म है, आत्मा की जो क्वालिटी है वो शांति है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, शुद्ध पवित्रता है, ये आत्मा की क्वालिटीज है। हर इंसान को क्या चाहिए, या किस किस को शांति चाहिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, आपको नहीं चाहिए शांति? चाहिए ना। किस किस को प्रेम चाहिए? सबको चाहिए। जिस किस को हैप्पीनेस, हम पूरी जिंदगी जो मेहनत कर इसी के लिए तो हैं जी, शांति के लिए, सुख के लिए तो काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो ये कि हमें ये नहीं पता कि सुख अलग है, कंफर्ट अलग है। हमको लगता बड़ा घर हो सुखी होंगे, ये चीजें हो हम सुखी रहेंगे, अच्छा सा सोफा हो हम सुखी रहेंगे। अभी अच्छा सा सोफा मुझे सुख देगा कि कंफर्ट देगा जी? मोबाइल, अच्छा सा मोबाइल हो, मोबाइल मुझे खुशी देगा, सुख देगा कि कंफर्ट देगा? इसलिए हमको लगता है कि ये सारी चीजें हमें सुख देगा, इसलिए हम क्रैक करना शुरू करते, खटा करना शुरू करते। बाय द एंड ऑफ द डे यू मोर अनहैप्पी। यू सी, संभाले कैसे, इतने तो लेके आ गए, संभालेंगे कौन, फिर दुखी होंगे। और इस संसार के, कलयुग के एक नियम है, इस संसार के हर चीज, ध्यान से सुनेंगे, इस संसार के हर चीज दुख से ही अंत होगा। इसको कहते हैं दुखांतर सुख। सुख के लिए जो लेते हैं वो थोड़े समय सुख देंगे, अंत में दुख से ही अंत होगा। मोबाइल लिया खुश, हाँ जी, हार लिया खुश, खराब हो गया खुश, गुम हो गया खुश। हर चीज दुख से ही अंत होना है, इसलिए इसको कलयुग भी कहते हैं ना, कलयुग है ना ये। अब सुख शांति आनंद ये किस दुकान से मिल, किस दुकान से सारी चीजें मिलेंगे? है कोई यहां सुपरमार्केट मॉल इस संसार में? नंबर वन। दूसरी बात, ये सुख है, प्रेम है, शांति है, ये फिजिकल है या नॉन फिजिकल है? ये स्थूल है या स्थूल नहीं है? स्थूल है, इज इट फिजिकल? जबकि ये सारी चीजें फिजिकल नहीं हैं, तो हम फिजिकल चीजों से, वस्तुओं से इन चीजों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? चाहे प्यार हो, चाहे शांति हो, चाहे सुख हो, चाहे पवित्रता हो, चाहे ज्ञान हो, ये कोई फिजिकल नहीं है, स्थूल नहीं है, सांसारिक नहीं है। इसलिए जब तक मैं अपने आप को आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, ये मेरा गुण है असलियत, ये मुझ में ऑलरेडी विद्यमान है, मैं हूं ही है, ये फील सोच समझ नहीं सकेंगे, अंदर से वो शांति उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मेडिटेशन माना राजयोग, इसको कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने मन बुद्धि को अपने ही भीतर ले जाए, अपने ब्रकटी के बीच में, जो मैं हूं, मेरा इतना सुंदर रूप है जिसमें कोई दाग नहीं है, एक सुंदर सितारा, शाइनिंग स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, जिसमें शांति है, प्रेम है, सुख है, पर्याप्त है। मुझे आपसे लेने की आवश्यकता नहीं, मेरे में इतना है कि मैं आपको दे सकती हूं। आप नहीं भी देंगे ना तब भी मैं आपको दे सकती हूं, इतना पड़ा है। तो हम हर बात में ये बिजनेस लेके आते हैं ना, आप देंगे तो हम देंगे। अरे यहां तक भी हम आपको देख के तब मुस्कुराएंगे जब आप हमें देख के मुस्कुराएंगे। हमको लगता नहीं इसने तो मुस्कुराया ही नहीं, तो मैं क्यों मुस्कुराऊं? हर बात लेन देन नहीं होता है ना, जो है मेरे अंदर ऑलरेडी है, इतना है कि बगैर कोई अपेक्षा के मैं दे सकती हूं, इतना है पर्याप्त मेरे अंदर। इसको कहते हैं रिच। रिच कौन है? अमीर कौन है? अमीर कौन है? देता है। ऐसा नहीं वो आप देंगे तो देंगे, उसके पास इतना है को देता जाएगा। तो हर आत्मा अमीर है, आत्मा में इतना है, इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतना प्रेम, जो देता चला जा सकता है। और जब हम देह के भान में, जिसको देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे, तब अपेक्षा शुरू होंगे। आप देंगे तो हम देंगे, आप ये करेंगे हम ये करेंगे, आप ऐसा रहोगे तो हम ऐसा रहेंगे। तो हमारी पूरी जिंदगी प्रोग्राम्ड, कंडीशन्ड है, हाँ या ना? जबकि आत्मा अनलिमिटेड है और जीवन आत्मा जीती है, तो हम खुद ही अपने जीवन में इतने सारे कंडीशंस लगा दें तो कैसे खुश रहेगी, कैसे खुश रहेगी? इसलिए हमारे पास करोड़ों होने पर भी, 10 गाड़ियां होने पर भी, सी, मेरे पास 10 वो है, क्लोजेट्स है, इसमें पूरी चीजें पड़े हैं, तब भी संतुष्टि नहीं है. यू नो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, तृप्त और खुशी, अंतर है. कई लोग क्या है कि कुछ ऐसा काम करते हैं, नौकरी उनके अच्छे खासे, उनको तनख्वाह भी मिल रहा है, पर वो कहता है आई हैव नो जॉब सेटिस्फैक्शन, मुझे इस जॉब में मुझे संतुष्टि नहीं है, इसलिए वो चेंज कर देते हैं. अरे अच्छा भला आपको मिल रहा है, नहीं नहीं इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है. तो जीवन में सबसे बड़ी बात, हम तृप्त जीवन जिएंगे, वो राजा है. तो तृप्त जीवन जी सकते हैं कि नहीं सकते हैं, इज इट डिपेंडेबल और नॉट डिपेंडेबल, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेबल है? तृप्त जीवन जीना डिपेंडेबल है या इंडिपेंडेंट है? आई श्योर, श्योर पक्का, बस सॉरी. Absolutely. So again, it's me, na? It's again me. तो ये मैं अपने consciousness को जितना clean, साफ और right रखूंगी, उतना जो है उतनी हमारी जिंदगी आसान होती चली जाएगी. जितना हम अपने लिए complicated सोचना शुरू करेंगे, तो जीवन भी complicated होगा. ऐसा नहीं वैसे, ये नहीं वो, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, तो मैं अपने ही जीवन को नरक बनाती हूं. प्लीज प्लीज, थोड़ी सी जिंदगी है, नरक न बनाए. एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, अपने मन की शांति, अपनी खुशी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज बनाए रखें. बाकी चीजें आएंगे चले जाएंगे, पैसे आएंगे चले जाएंगे. आध्यात्मिकता कोई पैसे के विरुद्ध नहीं है. बेशक कमाएं खाएं, खुश तो रहें, खुश तो रहें. जो पहने पहना हो पहनो, शांति से तो रहें. आप में से कौन कौन बहुत खुश है हमेशा? रियली? हेलो, यहां की बात नहीं कर रही हूं, वापस बैक होम. वेरी गुड, बिग हैंड फॉर ऑल दोज हु हैव यू नो रेज्ड योर हैंड. वेरी गुड, अ बिग बिग हैंड ऑफ अप्लॉज. बहुत अच्छा, हमेशा ऐसे रहे. क्यों आप अकेले रहते हो क्या? जिस जिसने हाथ खड़ा किया, चलिए. एनीवे, बहुत अच्छी बात है. तृप्त जीवन किस किस की है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात. पर इसके साथ साथ अभी हमें हर रोज ये अभ्यास करना है. अब चलिए, अपना नोटबुक पेन जो है, जो भी है आपके हाथ में, वो रख दीजिए. जस्ट सिट, आराम से बैठे, कुछ हाथ में पकड़े ना, कुछ भी ना पकड़े, साइड में रख दीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से बैठे, डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर बॉडी. जैसे भी बैठना आपको सहज लगे, इस मेडिटेशन में ऐसे ही बैठना वैसे ही बैठना ऐसा कुछ नहीं है. रिलैक्स बैठना, आराम से बैठना. अगर संभव है आंखें खोल के बैठे. डीप ब्रेथ, अपने मन को अपने सारे विचारों को ब्रह्मचर्य के बीच एकाग्र करें। ये ब्रह्मचर्य, the forehead, the center of the forehead, वो इतना पवित्र स्थान है, जहाँ हम तिलक भी लगाते हैं, ये स्थान मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूँ। अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। अपने मन की आंखों से देखते भी रहे, महसूस भी करें। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रकाश में मेरा असली गुण शांति है, प्रेम है, आनंद है। यही मेरा धर्म भी। मैं शांत स्वरूप आत्मा प्रकाश में ये मेरा अविनाशी रूप है। अमिट रूप है, अमर स्वरूप है मेरा। कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली मैं मालिक हूं। मैं आत्मा मन सोचने की शक्ति बुद्धि निर्णय करने की शक्ति संस्कार सहित दिव्य प्रकाशमय हूँ। इस संसार से पार सूर्य चांद सितारों से भी पार आत्मलोक मेरा घर है, जहां से मैं आई हूं और जहां मुझे वापस लौटना है। यह संसार कर्म क्षेत्र है, शरीर रूपे वस्त्र धारण कर इस संसार में अपना कर्म, अपना पार्ट अदा करने आई हूं। और जैसे ही मेरा पार्ट पूरा होगा, शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ मैं आत्मा अपनी आगे की यात्रा की ओर चली जाऊंगी। और आखिरी में अपना घर वापस जाऊंगी। महसूस करें मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है और मुझ में शक्ति भी है। जितनी शांति उतनी शक्ति भी है। इस संसार में हर कर्म करते इस शांति और शक्ति का बैलेंस बनाए रखूंगी। हर कर्म करते लोगों के व्यवहार में आते हमेशा मैं स्मृति और याद से चलूंगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप हूं और सामने वाला भी शांत स्वरूप आत्मा है। ओम माना मैं आत्मा, शांति माना मेरा धर्म मेरा गुण। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लंबा श्वास ले अम शांति।